दस ग्यारह छियासठ की तीसरे दिन के मध्याह्न की।
इट इज द मुरली डेटेड 10/11/66 इन द मिडल एंड ऑफ थर्ड पेज।
शंकराचार्य को जगत गुरु कह देते हैं।
द टॉपिक बीइंग डिस्कस्ड वाज दे कॉल शंकराचार्य द वर्ल्ड गुरु,
परंतु वो कोई सारी दुनिया का गुरु नहीं है।
बट ही इज नॉट द गुरु ऑफ द एंटायर वर्ल्ड।
सारी दुनिया का गुरु तो एक बाप ही आकर के बनते।
ओनली द वन फादर कम्स एंड बिकम्स द गुरु ऑफ द एंटायर वर्ल्ड।
सब आत्माओं का बाप है जो एक ही निराकार है, वो टीचर भी है और गुरु भी है।
द वन इनकॉर्पोरियल इज द फादर ऑफ ऑल द सोल्स, ही इज द टीचर एज वेल एज द गुरु।
किसी को पता नहीं है।
नो वन नोज दिस।
साधु संत आदि गवर्नमेंट को कहते हैं हमने हर होम छोड़ा है।
द होली मैन दैट इज एसेटिक्स से टू द गवर्नमेंट वी हैव रिनाउंस्ड आवर होम्स।
अभी देखो इन्हों के पास कितने पैसे रहते।
लुक दे हैव सो मच मनी विद देम एट दिस टाइम।
बाप कहते हैं मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ।
द फादर सेज आई कम टू अपलिफ्ट दीज होली मैन एज वेल।
फिर वो गुरु कैसे बन सकते।
सो हाउ कैन दे बिकम गुरुज
जब उनका भी उद्धार मुझे करना पड़ता है।
वेन आई हैव टू अपलिफ्ट देम एज वेल।
खुद भी गंगा स्नान करने जाते हैं।
दे देमसेल्व्स गो टू टेक बाथ इन द रिवर गैंजेस दैट इज गंगा।
फिर कहते हैं हम जगत गुरु हैं।
एंड देन से वी आर द वर्ल्ड गुरुज।
पति तो पावन बाप है या गंगा है।
इज द फादर द प्यूरिफायर ऑफ द सिंफुल वंस और इज इट द रिवर गंगा।
कितने ढेर हैं जो उनके फॉलोअर्स हैं, इन्हों की जैसे राजा ही है।
देर आर सो मेनी हु आर देयर फॉलोअर्स इट इज एज इफ दे हैव अ किंगशिप।
वो गुरु लोग इतना जल्दी थोड़ी बने कमाने।
दोज गुरुज विल नॉट एक्सेप्ट सो सून। वेन विल दे एक्सेप्ट।
इतना जल्दी नहीं मानेंगे तो कब मानेंगे।
इफ दे विल नॉट एक्सेप्ट सो सून वेन विल दे एक्सेप्ट।
जितने चपटे चल जाएंगे
जब उनके सारे चेले चपाटे टूट जाएंगे तो आकर के मुंह लटका।
वेन ऑल देयर फॉलोअर्स ब्रेक ऑफ दे विल बी फोर्स्ड टू कम एंड बाउ इन फ्रंट ऑफ द फादर।
वो ये भी नहीं मानेंगे कि परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है।
दे विल नॉट एक्सेप्ट ईदर दैट गॉड परमपिता परमात्मा इज नॉट ओमनी प्रेजेंट।
एक व्यापी है।
दैट ही इज प्रेजेंट इन वन।
इन बातों को मान ही नहीं सकते।
दे कैनॉट एट ऑल एक्सेप्ट दीज कॉन्सेप्ट्स।
तुम किसी को सुनावेंगे तो कहेंगे तुमको ब्रह्म कुमारियों का जादू लगा है।
If you narrate to someone, they will say, the magic of Brahma Kumaris is on you.
अगर इन बातों को मान जाए तो सारी उनकी राजाई चली जाए।
If they accept these concepts, their entire kingship will be gone.
परंतु आगे चलकर की ये सब समझेंगे।
However, in future, all of them will understand.
परंतु फिर too late हो जाएंगे।
But then, it will be too late.
इस बात के लिए too late हो जाएंगे।
It will be too late for what?
भगवान ऊपर चलने के लिए
कोई भी माला में नंबर आने के लिए too late हो जाएगा।
Someone said something. It will be too late for them to receive a number in any of the rosary.
वो फिर अपने धर्म में चले जाएंगे।
Then they will go to their own religion.
अपने धर्म में जाएंगे, अपने धर्म की माला बनाएंगे।
They will go to their own religion and make the rosary of their own religion.
बाप की जो माला है राजाई प्राप्त करने वाली माला, राजा बनने वाली माला, उस माला में नहीं आती।
They will not come in the rosary of the father, the rosary of the souls which attains kingship, the rosary of those who become kings.
शेष से शेष है देवी देवता धर्म।
The highest on high is the deity religion.
ऐसे तो वास्तव में ऊंची ऊंची ये ब्राह्मण धर्म है।
इन फैक्ट इन रियलिटी द हाईएस्ट ऑन हाई इज दिस ब्राह्मण रिलीजन।
क्योंकि अभी तुम ब्राह्मण हो और बाप के साथ बैठे हुए हो।
बिकॉज एट प्रेजेंट यू आर ब्राह्मण्स and are sitting with the father.
बाप आते हैं ब्रह्मातल में और तुम ब्रह्मा की औलाद बनते हो.
The father comes in the body of Brahma and you become Brahma's children.
तो ऊंचे ऊंचे बाप के साथ तुम बैठे हो तो तुम हो ऊंचे चोटी.
So you are sitting with the highest on high father. Therefore you are the highest on high, the top knot, choti.
तुमको पढ़ाने वाला विचित्र विदेही बाप है.
The formless, that is Vichitra, bodiless, that is Videhi father, is the one who teaches you.
उसका चित्र नहीं खींचा जा सकता.
His picture cannot be sketched.
बाप कहते हैं मुझे देह नहीं है.
The father says, I don't have a body.
मेरा नाम है शिव.
My name is Shiv.
मेरी बिंदी का ही नाम है.
This is the name of my point.
ये नाम कभी बदलता नहीं है.
This name never changes.
कब बदलता है? जब शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाता है.
When does it change? When the bodies change, their name changes as well.
मैं हूँ परमात्मा.
I am the supreme soul.
मेरा नाम तो शिव ही है. मेरी जन्म पत्री कोई निकाल नहीं सकता.
My name is definitely only Shiv. No one can work out my horoscope.
जब देह की रात होती है तब मैं आता हूँ.
I come when there is the unlimited night.
अर्धे की रात क्या?
What is the limited night?
ये 12-12 घंटे की अर्धे होती है.
It is the night that lasts for 12 hours every day.
और बेहद की रात क्या?
And what is the unlimited night?
संगम युग में कलयुग के अंत में जब सारी दुनिया में घोर अंधियारा फैल जाता है, ज्ञान का अंधियारा.
In the confluence age, in the end of the iron age, when extreme darkness, the darkness of ignorance spreads out in the entire world,
बेहद की रात.
It is the unlimited night.
जब ऐसी रात फैल जाती है तो मैं आता हूँ दिन बनाने के लिए.
When such darkness spreads out, I come to make it into the day.
अभी है संगम. इन बातों को अच्छे से समझ करके फिर धारण करना चाहिए.
Now it is the confluence age. You should understand these topics properly and then put it into practice.
कि मैं कौन से संगम युग पर आता हूँ.
On which confluence age do I arrive?
कौन सी बेहद की रात में आता हूँ.
In which unlimited night do I come?
तो इस वर्ती में लाना चाहिए ना?
Therefore, you should bring it into your memory, shouldn't you?
चित्र देखने से ही 84 जन्म फौरन याद आ जाएंगे.
Just by looking at the picture, you will remember the 84 births immediately.
अभी हम चक्कर लगाए आए हैं. फिर बाबा हमको जंप दिलाते.
Now we have returned after completing a cycle. Then Baba makes us take a jump.
हम high jump लगावेंगे.
We will take a high jump.
और ब्राह्मण सो देवता बन जाएंगे.
And become a deity from a Brahmin. Om Shanti.
ये है 14/11/66 की प्रातः क्लास.
This is the morning class dated 14/11/66.
रिकॉर्ड चला है बचपन के दिन भुला न देना.
The record song played was Do Not Forget Your Childhood Days.
आज हंसे कल रुलाने.
Today you laughed, tomorrow do not make me cry.
किसको रुलाएंगे?
Who will be made to cry?
और कौन रुलाएंगे? रावण रुलाएंगे.
And who will make them cry? Someone said Ravan. Will Ravan make them cry?
किसको रुलाएंगे?
Who will he make cry?
रावण किसको रुलाएंगे?
Who will Ravan make cry?
रावण तो सीता को रुलाता है.
Ravan indeed makes Sita cry.
यहाँ किसने किसको कहा?
Here, who said this to whom?
बाप ने बच्चों को कहा कि जो बचपन के दिन है.
The father said to the children that the days of childhood.
जब नए नए ज्ञान में आते हैं.
When they newly come in the knowledge,
तो बहुत उमंग उत्साह से आते हैं.
They come with a lot of zeal and enthusiasm.
चाहे बेसिक में आते हैं, चाहे एडवांस में आते हैं, तो कितना खुश होते हैं।
Whether they come in basic knowledge or in advanced knowledge, they become so happy.
जैसे कोई निधि मिल गई हो।
As though they found some treasure.
फिर धीरे-धीरे वो नशा माया उतारती रहती है।
Then gradually Maya keeps on reducing the intoxication.
उतरते फिर बाप को भूल लेते हैं।
While it reduces, they start forgetting the father.
तो बताया ये बचपन के दिन बुलाए न देना।
Hence it was said, do not forget these childhood days.
मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत का अर्थ तो समझ लिया है।
The sweet spiritual children have indeed understood the meaning of the song.
क्या समझ लिया है?
What have they understood?
ज्ञान में आने के बाद भी चार अवस्थाएं होती हैं।
Even after coming in the knowledge, there are four phases.
Sato pradhan, sato samanya, rajo aur tamo.
Sato pradhan consisting mainly in the quality of goodness and purity. Sato samanya where there is ordinary goodness and purity. Rajo dominated by the quality of activity or passion. And tamo dominated by the quality of darkness or ignorance.
जब ज्ञान में शुरुआत में आते हैं तो सात्विक स्टेज होने के कारण ऐसे लगता है बस हम तो बाप के बन गए।
When they come in the knowledge initially, because of being in a pure sattvic stage, they feel we belong to the father. That is all. We have become the children of the father.
समर्पण में बुद्धि हो गई तो अर्पण में जो होता है उसको बल बहुत ज्यादा मिलता है।
The intellect has surrendered, so the one who is devoted receives a lot of strength.
बहुत उमंग उत्साह आ जाता है।
He becomes very enthusiastic.
फिर धीरे धीरे माया अपना काम करती है।
Then gradually Maya does her job.
बचपन तीन प्रकार का है।
The childhood is of three types.
एक लौकिक है।
One is the laukik.
और दूसरा है निवृत्ति मार्ग वालों का बचपन।
And the other is the childhood of the people who follow the path of renunciation.
वो भी घर बार छोड़ करके जीते जी मर करके जाए सन्यासियों के बनते हैं।
They too renounce their household, die alive and go to belong to the sannyasis.
उनके वही गुरु सन्यासी हैं।
Those very sannyasis are their gurus.
उनको बाप नहीं होता है।
They don't have a father.
जो घर बार छोड़ते हैं घर बार से मरते हैं।
Those who leave the household, those who die from the household.
घर बार से निश्चय उखड़ जाता है विश्वास टूट जाता है।
The ones who lose faith in the household, those whose confidence breaks.
वो सन्यासी जो गुरु के फॉलोअर्स बनते हैं।
Those sannyasis who become guru's followers,
वो फिर बाप नहीं मानते।
They do not accept them as their father.
किसको? गुरु को बाप नहीं मानते।
Whom? They don't accept the guru as the father.
उनके साथ रहते हैं।
They just live with them.
बाप का बनना माना बचपन।
To become a child of the father means it is the childhood.
बाप को पहचान लिया।
If you recognize the father,
निश्चय बुद्धि हो गए माना बच्चा बन गया।
Developed a faithful intellect, it means you became the child of the father.
वो जीते जी मर कर जाए गुरु का बनते हैं।
They die alive and become children of the guru.
वो तो जंगलों में चले जाते हैं।
They go into the forest.
तुम्हारा तो है वंडरफुल बचपन।
You have a wonderful childhood.
एक माता पिता को छोड़ दूसरे माता पिता के बनते हो।
You give up one set of parents and become the children of another set of parents.
लौकिक माता पिता से बुद्धि हट जाती है।
The intellect detaches from the laukik parents.
और अलौकिक माता पिता से पारलौकिक माता पिता से बुद्धि जुड़ जाती है।
And it connects with the alaukik parents, the paralaukik parents.
यहाँ तो है रूहानी माता पिता।
Here, in fact, the mother and the father are spiritual.
होते हैं जिस्मानी माता पिता।
Those are the bodily mother and father.
और ये है रूहानी माता पिता।
And these are the spiritual mother and father.
हम रूह बच्चे हैं।
We spirits, रूह, are the children. We have received the knowledge that we are a soul, point of light. We are not this body. We have received this body from the bodily parents. The bodily parents are connected with this one birth. As long as this body is there, its bodily parents are also accepted. But the parents of the soul are for always. The soul is always present. The soul is never destroyed. So, the parents of the soul are also indestructible. So, this is your Marjiva birth.
Marjiva mana?
What does Marjiva mean?
Purane pan se mar gaye.
You died from the oldness.
Aur naye maa baap ke ban gaye.
And became the children of new parents.
Isliye godkar ruhani janam hai.
This is a spiritual birth on the godly lap.
Ruhani baap ke bacche bante ho.
You become the children of the spiritual father.
Ruhani behad ka baap tumse baatein kar rahe hai.
The spiritual unlimited father is talking with you. All of them are bodily fathers. This one is spiritual. That is why there is the song, after becoming the child of the father, after becoming Marjiva. Do not forget the zeal and enthusiasm that you have received, the happiness which you have received.
Shiv Baba kehte ho na?
You call him Shiv Baba, don't you?
Shiv Baba to hai unchi se unchi bhagwan.
Shiv Baba is the highest on high God.
Jo koi Gita aadi par kuch debate karte hain.
Those who debate on the Gita and so on.
To pehle ye baat puchni hai unchi se unchi bhagwan kaun hai?
First, you have to ask them. Who is the highest on high God?
Krishna Bhagavan hai, Ram Bhagavan hai, kaun hai?
Is it God Krishna? God Ram? Who is it?
Brahma Devata kaha jata hai, Vishnu Devata kaha jata hai.
It is said, Diti Brahma, Diti Vishnu.
Shlok gaate hai na, to bolte hai Brahma Devata hai nama, Vishnu Devata hai nama. Phir kehte hai, Shiva Paramatma hai nama.
When they sing a verse, that is shlok, they say, Brahma Devtai Namaha, Vishnu Devtai Namaha, and then they say Shiv Paramatmai Namaha. Salutation to the deity Brahma, salutation to the deity Vishnu, and salutation to God Shiv.
So Brahma, Vishnu, Shankara, teesri murti ki or jab jaate hai, to aise kyun kehte hai? Shiv Paramatmai Namaha.
So, Brahma, Vishnu, Shankar, when they go to the third idol, why do they say Shiv Paramatmai Namaha?
Iska matlab hai ki Brahma aur Vishnu devata koti ke.
It means that Brahma and Vishnu belong to the deity category.
Aur Shiva Shankar Bholenath Paramatma Patadari.
And Shiv Shankar Bholenath is the actor who plays the role of God.
Wo sabhi ka baap hai.
He is everyone's father.
Saari duniya walon ka wo baap hai.
He is the father of all the people in the entire world.
Saari duniya mein kaun kaun hote hain?
Who are they all in the whole world?
Hindu, Muslim, Sikh, Isai, sabhi dharm ke to hote hain.
The Hindus, Muslims, Sikhs, Christians, people of all the religions are present in the whole world.
To sabka wo baap hai.
Therefore, he is the father of all. First of all, you have to explain this topic. What?
Your supreme soul, atmaon ka to baap hai hi.
That the supreme soul is indeed the father of the souls.
Lekin jab is srishti par aata hai.
but when he comes on this world,
तो जिस तन के द्वारा मुकर्रर पार्ट बजाता है,
the body through which he plays a permanent role,
तो वो तनधारी जो भी मनुष्य मात्र हैं, किसी भी धर्म संप्रदाय के हो, वो सब का बाप है.
That bodily being is the father of all the human beings to whichever religious community they may belong.
एक धर्म का धर्म पिता नहीं है.
He is not the religious father of only one religion.
वो सब धर्म पिताओं का भी बाप है.
He is the father of all the religious fathers too.
माने जो भी खास खास धर्म पिताएं इस शक्ति पर आए अपना अपना धर्म स्थापन किया.
Meaning, all the special religious fathers who came on this world and established their religion,
उन सब धर्म पिताओं का उन बापों का भी बाप.
He is the father of all those religious fathers. He is the father of those fathers.
सब उसको मानते हैं.
Everyone believes in him.
Christ भी उसको मानते हैं, God father कहते हैं.
Even Christ believes in him. He calls him God the father.
Abraham, Buddha, Christ, सब उसको बाप मानते हैं.
Abraham, Buddha, Christ, all believe in him as the father.
पहले पहले ये बात समझाएं.
First, you have to explain that
कि ऊंचे से ऊंचे बाप तो एक होगा ना.
The highest on high father will be one, won't he?
जो Abraham, Buddha, Christ हैं, वो ऊंचे से ऊंचे नहीं हैं.
Abraham, Buddha, Christ are not the highest on high.
ऊंचे हैं, महान हैं.
They are high. They are great.
लेकिन महान से महान नहीं.
बट दे आर नॉट द ग्रेटेस्ट.
ब्रह्मा विष्णु आदि को कब गॉड फादर नहीं कहेंगे.
ब्रह्मा विष्णु एंड सो फोर्थ विल नेवर बी कॉल्ड गॉड द फादर.
क्या कहा?
व्हाट वाज सेड?
ब्रह्मा को भी गॉड फादर नहीं कहेंगे और विष्णु को भी गॉड फादर नहीं कहेंगे.
ब्रह्मा एज वेल एज विष्णु will not be called God the Father.
वो जगत के पिता नहीं है.
They are not the fathers of the world.
जगतम पितरम वंदे किसको कहा जाता है?
Who is called जगतम पितरम वंदे? That is, नमस्ते टू द वर्ल्ड फादर.
शंकर पार्वती को कहा जाता है.
It is said for शंकर एंड पार्वती.
पहले तो ये पक्का करो.
First, make this sure
कि सारी दुनिया का बाप एक है.
That the father of the entire world is only one.
ये जो अनेक धर्म पिताएं बैठे हुए हैं.
All the religious fathers who are there.
अलग अलग धर्मों के धर्म पिताएं.
The religious fathers of the different religions.
वो अनेक पिताएं मनुष्य शक्ति के बाप नहीं है.
Those various fathers are not the father of the human world.
सारी मनुष्य शक्ति का बाप तो एक ही है.
The father of the entire human world is definitely only one.
जिसमें शिव सुप्रीम सोल मुकर्रर रूप से आता है.
In whom Shiv, the supreme soul, comes in a permanent way.
तो ये पक्का करो.
Therefore, make this sure.
वो संगम युग निवासी ब्रह्मा कोई काम का नहीं.
ब्रह्मा, who is the resident of the confluence age, is of no use.
God father, जो निराकार है, वो एक है.
God the Father, who is incorporeal, is only one.
ब्रह्मा का रूप निराकार स्टेज वाला नहीं होता.
ब्रह्मास फॉर्म इज नॉट एन इनकॉर्पोरियल स्टेज.
और बाप जब बाप के रूप में आता है तो निराकार स्टेज वाला होकर रहता है.
एंड व्हेन द फादर कम्स इन द फॉर्म ऑफ द फादर, he assumes the incorporeal stage and comes.
तो ये है समझाने बहुत ऊंची.
So, this explanation is very elevated.
जिसको मालिक भी कहते हैं.
He is also called the master, that is Malik.
इसको निराकार को या साकार को?
Who? The incorporeal one or the corporeal one?
उसे निराकार God father को मालिक भी कहते हैं.
That incorporeal God the father is also called the master.
वो है सब आत्माओं का बाप. उनको ही पतित पावन कहा जाता है.
He is the father of all the souls. He alone is called the purifier of the sinful ones.
सब पतितों को पावन बनाने वाला.
The one who purifies all the sinful ones.
अगर बाप है तो वर्षा जरूर मिलेगा.
If he is the father, यू विल श्योरली रिसीव द इनहेरिटेंस.
बाप से क्या मिलता है? बाप से जन्म मिलता है.
वॉट डू वी गेट फ्रॉम द फादर? वी टेक बर्थ थ्रू द फादर.
जिन बच्चों को जन्म मिलता है उन बच्चों को फिर बड़े होने पर वर्षा भी मिलता है.
द चिल्ड्रन हु टेक बर्थ ऑल्सो रिसीव द इनहेरिटेंस ऑन ग्रोइंग अप.
बच्चे समझदार बनते हैं, बड़े बनते हैं.
When the children become intelligent, when they grow up, they become worthy of the inheritance. We receive temporary inheritance from the Laukik father. We receive the inheritance for one birth. That too, some receive it while some do not receive it.
जन्म जन्मांतर का वर्षा
है. द इनहेरिटेंस ऑफ मेनी बर्थ्स इज रिसीव्ड थ्रू दिस पारलौकिक फादर.
और बेहद का वर्षा मिलता है और सबको मिलता है.
एंड वी रिसीव द अनलिमिटेड इनहेरिटेंस. मोर ओवर एवरीवन रिसीव्स इट.
क्या 500-700 करोड़ मनुष्यों की सृष्टि में एक भी आत्मा ऐसी नहीं है जिसको बाप का मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा न मिलता.
What in the world of 5-7 billion human beings, not even one soul is such who does not receive the father's inheritance of liberation and liberation in life.
तो ये बात याद करो.
Therefore, remember this.
कि उसे बेहद के बाप से ये वर्षा कब मिला था?
When did you receive this inheritance from that unlimited father?
याद करना चाहिए ना.
You should remember this, shouldn't you?
बाप तो है ही नहीं दुनिया रखने वाला.
The father is indeed the creator of the new world.
ऐसे लोग तो बाप होते हैं, बच्चों के लिए नया मकान बनाते हैं.
Just like there are Laukik fathers, they make a new house for their children.
तो पुराना मकान गिराना पड़ता है, नया मकान बनाए के देते हैं.
So the old house has to be demolished and they make the new house.
ऐसे ही बेहद का बाप है.
Similarly, this one is the unlimited father.
बेहद का बाप है.
Since he is the unlimited father,
तो सारी मनुष्य सृष्टि के लिए नई दुनिया बना कर देते हैं.
He makes the new world for the entire human world.
नई दुनिया में सारा कुछ नया होता है.
In the new world, everything is new.
कोई भी पुरानी दुखदायी वस्तु नहीं होती.
नो ओल्ड सोरोफुल थिंग इज देयर.
उनका नाम शिव है. क्यों?
हिज नेम इज शिव. व्हाई?
क्योंकि वो हर हालत में कल्याणकारी.
बिकॉज ही इज बेनिफिशियल इन एवरी सिचुएशन.
जो कुछ बोलता है वो भी कल्याणकारी.
वॉट एवर ही स्पीक्स इज बेनिफिशियल.
जो देखता है वो दृष्टि भी कल्याणकारी.
वॉट एवर ही सीज दैट विजन इज बेनिफिशियल एज वेल.
जो वाइब्रेशन छोड़ता है वो भी कल्याणकारी.
द वाइब्रेशन विच ही गिव्स आउट इज ऑल्सो बेनिफिशियल.
और जो भी कर्म करता कराता है वो सब कल्याणकारी है.
And whatever actions he does and makes others do, all of them are beneficial.
कहते भी है शिव परमात्मा ही नमः.
It is also said शिव परमात्मा ही नमः.
उनकी जयंती भी मनाते हैं.
His jayanti, that is birthday, is celebrated as well.
क्योंकि वो है पति से पावन रचयिता, नारी कुल है.
Because he is the purifier of the sinful ones, the creator. He is knowledgeable.
तो जब नॉलेज फुल है तो सर्वव्यापी की बात हो जाती है.
सो व्हेन ही इज नॉलेजेबल द इश्यू ऑफ बीइंग ओमनीप्रेजेंट वैनिशेस.
उनकी महिमा है क्रिएटर.
हिज प्रेज इज द क्रिएटर.
क्या क्रिएट करते हैं?
व्हाट डज ही क्रिएट?
आत्मा थोड़ी क्रिएट की जाती है. आत्मा तो जरा हमारा विनाशी है ही.
समवन सेड सोल्स. द सोल्स आर नॉट क्रिएटेड. द सोल्स आर ऑलरेडी इटर्नल, इमॉर्टल, इंडिस्ट्रक्टेबल. दैट इज अजर अमर अविनाशी.
वो क्रिएट करता है नई दुनिया.
ही क्रिएट्स द न्यू वर्ल्ड.
जो पुरानी दुनिया है, जो दुखदायी दुनिया है,
द ओल्ड वर्ल्ड विच इज देयर, the sorrowful world which is there,
उस दुखदायी दुनिया को बदल करके दुखधाम को बदल करके सुखधाम बनाता है.
He transforms that sorrowful world, the abode of sorrow, Dukdham, and creates the abode of happiness, Sukdham.
So, God Father.
Thus, the highest on high is indeed God the Father. Those religious fathers will not be called the highest on high. Because they don't make the new world after coming.
काम ऊंचते ऊंचे नहीं है तो नाम भी उनका ऊंचते ऊंचे नहीं हो सकता.
When their work is not the highest on high, then their name cannot be the highest on high either.
उनको ऊंचते ऊंचे कहेंगे नहीं.
They will not be called the highest on high.
ऊंचते ऊंचे है बाप जो कि सारी दुनिया को नया बना देते हैं.
The highest on high is the father who makes the entire world new.
उनको रैंडम भी कहते हैं. Liberator भी कहते
हैं. He is called merciful as well as the liberator.
सुखकर्ता सुखकर्ता है ना.
He is the giver of happiness, सुखकर्ता, and the remover of sorrow, दुखहर्ता, isn't he?
गायन भी है. सुखकर्ता सुखकर्ता.
There is also the praise, सुखकर्ता दुखहर्ता.
कोई नए स्थान पर जाते हैं तो गाइड को साथ ले जाते हैं कि दिखाए फलाने फलाने स्थान का.
When they go to a new place, they take a guide along with them, so that he may show where such and such places are.
विलायत से आते हैं तो गाइड यहाँ का देते हैं.
When someone comes from a foreign country, he is given a guide from here, India.
सब कुछ दिखाने के लिए.
To show everything.
तीर्थ यात्रा आदि पर ले जाने वाले पंडे आदि भी होते हैं.
There are also pandas, that is guides, who take devotees, tourists, on journeys to pilgrimage places.
अब बाप को भी गाइड लेते हैं.
Well, the father is also called a guide.
कहाँ का गाइड है? नई दुनिया. वो नई दुनिया का गाइड है. नई दुनिया का रास्ता बताता है.
He is a guide of where? He is the guide of the new world. He shows the route to the new world.
शांति धाम का रास्ता बताता है.
He shows the route to the abode of peace, Shanti Dham.
Sukhdham aur Shanti Dham ka rasta batata hai.
He shows the route to the abode of happiness and the abode of peace.
Aur Dukhdham se churaye deta hai.
And he rescues us from the abode of sorrow.
Dukhdham se churata hai to liberator kaha jata hai.
When he liberates us from the abode of sorrow, he is called the liberator.
To zarur usne kab guide kiya hoga na.
Then certainly he must have guided us at some time, mustn't he? By saying he is omnipresent, everything ends there. The first explanation is he is the father of all. Gita is indeed sung by God Shiv. If this is proved,
तो सारा शास्त्र जो गीता के बाल बच्चे हैं वो खुद ही सिद्ध हो जाएंगे.
Then all the other scriptures which are the children of the Gita will automatically be proved to be smaller than the Gita.
क्या सिद्ध कर लिया?
What did we prove?
हैं? गीता को क्या सिद्ध कर लिया?
गीता का भगवान को.
What did we prove in the Gita? Students, who is the God of the Gita?
गीता का भगवान निराकार शिव परम पिता परमात्मा है.
द गॉड ऑफ द गीता इज द इनकॉर्पोरियल शिव, द सुप्रीम फादर, सुप्रीम सोल.
साकार श्री कृष्ण
नहीं,
और वो ब्रह्मा
नहीं
है.
एंड नॉट द कॉर्पोरियल श्री कृष्ण एलियस ब्रह्मा.
क्योंकि ब्रह्मा है साकार.
बिकॉज ब्रह्मा इज कॉर्पोरियल.
एक भी फोटो ब्रह्मा का ऐसा नहीं है जो निराकार स्टेज वाला.
There is not even a single photo of Brahma which is of the incorporeal stage.
सैकड़ों हजारों फोटो ब्रह्मा के बने हुए.
Hundreds and thousands of photos of Brahma are made.
लेकिन उन फोटोज में एक भी निराकारी स्टेज का फोटो नहीं.
But there isn't even a single photo of the incorporeal stage in among those photos.
इससे साबित होता है कि वो क्राइस्ट है, बुद्ध, गुरु नानक की तरह पिता नहीं है।
इट प्रूव्स दैट ही इज नॉट अ फादर लाइक क्राइस्ट, बुद्ध, गुरु नानक।
क्या है? माता का पार्ट। माता होती है शाकाहारी।
वॉट इज ही प्लेज द मदर्स पार्ट। द मदर इज कॉर्पोरियल।
और बाप होता है बीज। बीज अर्थात निराकार।
एंड द फादर इज द सीड। सीड मीन्स द इनकॉर्पोरियल वन।
तो पहले गीता का सच्चा नाम बताना चाहिए।
फर्स्ट यू शुड से द ट्रू नेम ऑफ द गीता।
गीता का सच्चा नाम क्या हुआ?
वॉट इज द ट्रू नेम ऑफ द गीता? समवन सेड समथिंग।
गीता का सच्चा नाम क्या हुआ?
वॉट इज द ट्रू नेम ऑफ द गीता?
गीता उसका सच्चा नाम क्या होगा?
वॉट विल बी द ट्रू नेम ऑफ द गीता?
गीता है तो गीता पति भगवान है।
जगदम्बा।
वेन देर इज द गीता देर इज द हस्बैंड ऑफ द गीता गॉड गीता पति भगवान एज वेल। समवन सेड जगदम्बा।
हाँ जी वो सारे जगत की माता है।
यस शी इज द मदर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड।
माता है तो पिता भी जरूर
होगा। वेन द मदर इज प्रेजेंट देन श्योरली द फादर विल बी प्रेजेंट एज वेल।
तो वो है निराकार भगवान जो उपवास करता है।
हेंस ही इज द इनकॉर्पोरियल गॉड हु स्पीक्स।
एक गीता शास्त्री ऐसा है जिसमें भगवान वाच लिखा हुआ है।
ओनली द स्क्रिप्चर गीता इज द वन इन विच भगवान उवाच हैज बीन रिटन।
तो भगवान उवाच गीता है सर्वश्रेष्ठ शास्त्र।
सो गॉड सेड द गीता इज द ग्रेटेस्ट स्क्रिप्चर।
क्या? सर्वशास्त्र शिरोमणि।
वॉट द जेम ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स।
लेकिन जब सर्वशास्त्र शिरोमणि है तो सारी दुनिया को मानना चाहिए ना?
But when it is the gem of all the scriptures, then the entire world should accept it, shouldn't it?
सारी दुनिया उसको क्यों नहीं मानती?
Why doesn't the entire world accept it?
सब धर्म के लोगों को मानना चाहिए।
The people of all the religions should accept it.
क्या कारण हुआ कि नहीं मानती?
What is the reason that they don't accept it?
क्योंकि उसमें साकार का नाम डाल दिया गया।
It is because they have put the name of the corporeal one in it.
दूसरे धर्म वाले तो निराकार को मानते हैं।
The people of the other religions just believe in the incorporeal one.
वो साकार को तो मानते ही नहीं।
They do not believe in the corporeal one at all.
तो वो गीता को भी नहीं मानते क्योंकि श्री कृष्ण भगवान वहाँ के लिए होती है।
That is why they do not believe in the Gita either. Because they have written Shri Krishna Bhagwan Uvaj. That is, God Krishna spoke in it as well.
So, जो श्री कृष्ण भगवान उवाच लिखी थी यार उसकी शूटिंग कहाँ होती है?
So, श्री कृष्ण भगवान उवाच which they have written, when does its shooting take place?
ब्राह्मण जंगल की दुनिया में शूटिंग होती है।
Its shooting takes place in the Brahmin world of the confluence age.
यहाँ भी जो गीता है उसे गीता में नाम डाल दिया पिता श्री ब्रह्मा बाबा।
Here also they have put the name Pitashri Brahma Baba in the Gita.
पहले मुनियों में लिखा होता था शिव बाबा याद है।
Previously शिव बाबा याद है that is do you remember शिव बाबा was written in the मुरलीस।
बाद में जब मम्मा बीमार हुई।
Afterwards when मम्मा fell ill
थोड़ा मम्मा का यदि में नियंत्रण कम हुआ।
When मम्मा's control became a little loose in the yagya.
तो जो मनमत चलाने वाले हैं, उन्होंने मुरली में डालना शुरू कर दिया।
Then those who follow their own opinions, that is मनमत, started to put it in the मुरलीस।
शिव बाबा याद है से पहले डाल दिया। क्या डाल दिया? पिताश्री शिव बाबा याद।
They put it before शिव बाबा याद है। What did they put? पिताश्री शिव बाबा याद है।
माना जो पिताश्री ब्रह्मा है वो शिव बाबा हो गए।
इट मीन्स पिताश्री द हाइस्ट फादर ब्रह्मा हिमसेल्फ बिकेम शिव बाबा।
तो पिताश्री ब्रह्मा ने क्या मुरलियां गाई?
Then, did Pitashri Brahma narrate the Murlis?
Murliyo ka gyan kisne sunaya?
Shiv Baba.
Shiv Baba ne sunaya?
Who narrated the knowledge of the Murlis? Students, Shiv Baba. Shiv Baba narrated it.
Lekin Shiv Baba ne bhi aakhir aadi mein kab sunaya?
But after all, when did Shiv Baba himself narrate in the beginning?
Pehle pehle kab sunaya?
When did he narrate them first of all?
सन 36 में 35 में पहले पहले वो ज्ञान का बीज रोपण किसने किया
आदि ब्रह्मा
का Someone said in the beginning of the yagya in the year 1936-37 who sowed the seed of knowledge first of all Someone said आदि ब्रह्मा Someone said गीता माता Someone said सेवक राम
आदि पिता
आदि पिता आदि ब्रह्मा
आदि ब्रह्मा ने वो ज्ञान का बीज रोपण किया
आदि पिता दैट इज द फर्स्ट फादर सोड द सीड ऑफ नॉलेज इन आदि ब्रह्मा दैट इज द फर्स्ट ब्रह्मा
तो उस आदि को भूल गए
दे फॉरगॉट द फर्स्ट वन
ब्रह्मा का जो रूप है माता का जो रूप है प्यारापन का जो रूप है उसको पकड़ लिए
दे कॉट होल्ड ऑफ द फॉर्म ऑफ ब्रह्मा The form of the mother, the form of love, that is pyarapan.
So, batao Shiv Baba ki pehchan kya hogi?
Now, say this. What will be the identification of Shiv Baba?
Jab Gita mein naam hi dal diya Shri Krishna ka.
When they have put the very name of Shri Krishna in the Gita.
Brahma ka.
That is of Brahma.
Aur Brahma hai sakar.
And Brahma is corporeal.
So, jo sakar hai. उसको सारी दुनिया भगवान नहीं मानेगी
सो नॉट द एंटायर वर्ल्ड विल एक्सेप्ट द कॉर्पोरियल एज गॉड
वो तो कहते हैं मैं शरीर का आधार लेकर के पतित से पावन बनाता हूँ
ही इन फैक्ट सेज आई टेक द सपोर्ट ऑफ दिस बॉडी एंड प्यूरिफाई द सिंफुल वंस
शरीर का आधार लेके पतित से पावन बनाते
द सपोर्ट ऑफ विच बॉडी डज ही टेक टू प्यूरिफाई द सिंफुल वंस
दादा लिख रहा है ब्रह्मा का आधार लेकर के पतितों को पावन बनाते हैं
डज ही टेक द सपोर्ट ऑफ द बॉडी ऑफ दादा लेखराज ब्रह्मा टू मेक सिंफुल वंस प्योर
पतितों से पावन तो कोई बना नहीं
नो वन बिकेम प्योर फ्रॉम इम्प्योर
ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया
ब्रह्मा इन फैक्ट लेफ्ट हिज बॉडी
न तन पति से पावन है ना
Neither the body became pure from impure.
Aur na man buddhi pati se pavan bani.
Nor did the mind and the intellect become pure from impure.
So ye baat to jhooti ho gayi. Kya? Ki Gita ka Bhagwan Shri Krishna urf Dada Lekhraj Brahma hai.
Therefore, this statement became false. Which one? That the God of the Gita is Shri Krishna, alias Dada Lekhraj Brahma.
O Dada Lekhraj Brahma, Gita ka Bhagwan nahi hai.
Dada Lekhraj Brahma is not the God of the Gita.
Ye galat shooting kar di.
They did this wrong shooting.
Yahan jinhone shooting ki.
The people who did this shooting here.
Woh wahan drama mein jo broad drama hoga, Dwapar Yug se.
In the drama, in the broad drama that will begin from the Copper Age.
Wahan bhi Krishna ka naam dal denge.
There too, they themselves will put the name of Krishna in the Gita.
Aur duniya mein Bharat ka maan martaba kam ho jayega.
And the honor and position of Bharat will be reduced in the world.
Gita ka maan martaba kam ho jayega.
The honor and position of the Gita will be reduced.
तो राजयोग सिखाने के लिए बाप आते हैं बच्चों को बताते हैं
सो द फादर कम्स टू टीच राजयोग ही टेल्स द चिल्ड्रन
कि मैं आकर के तुमको पढ़ाता हूँ
आई कम एंड टीच यू
मैं राजयोग सिखाता हूँ इसमें कैसे आदमी क्या करेंगे
आई टीच यू राजयोग व्हाट विल कैरेक्टर्स एक्सेट्रा डू इन इट
ये तो आकर के बच्चों को पढ़ाते हैं
He just comes and teaches the children.
तुम सतयुग में जाकर के राज करेंगे.
You will go and rule in the golden age.
और तुमको वर्षा मिलता है.
And you receive the inheritance.
बाकी सारे आत्माएं मुक्ति धाम में होंगी.
All the other souls will be in the supreme abode. that is Mukti Dham.
Yeah? Tumko varsha milta hai.
What? You receive the inheritance.
Aur baaki sab aadmi? Yo?
And the rest of all the souls, students, will be in the abode of peace. Why?
Tumko varsha kyun milta hai? Baaki sab aadmi shanti dham mein kyun hongi?
Why do you receive the inheritance? And why will the rest of the souls be in the abode of peace? The rest of the souls should go in the abode of happiness as well. Students, because we become the direct children. Yes, you means those who are sitting directly in front of the father. Those who sit in front of him and study from the father. Receive the inheritance of the abode of happiness of heaven. And those who don't come in front of him do not receive the inheritance of heaven. Achha, someone said, how will they receive the inheritance if they don't become the children of the father?
तो दूसरे तीसरे चौथे और आठवें नारायण को वर्षा नहीं मिलेगा क्या?
Then won't the second, third, fourth and eighth नारायण receive the inheritance?
उनको वर्षा तो मिलेगा.
The students said something. They will certainly receive the inheritance.
लेकिन उनको वर्षा मिलेगा अपने माँ बाप से.
But they will receive the inheritance from their parents.
क्या? देवताओं से वर्षा मिलेगा.
What? They will receive the inheritance from deities.
भगवान बाप से उनको डायरेक्ट वर्षा नहीं मिलता.
They do not receive the inheritance directly from God the Father.
और तुम डायरेक्ट भगवान बाप से वर्षा पाते?
And you receive the inheritance directly from God the Father.
So direct Bhagwan Baap se jo paayenge.
So those who will receive it directly from God the Father.
Unka to varsha bahut uncha hoga. Kya unchai hogi?
Their inheritance will be much greater. What will be its greatness?
Unka girti kala ka varsha hoga ya kirti kala ka hoga?
Will their inheritance be in the descending stage of the celestial degrees? Or will it be in the ascending stage of the celestial degrees? They receive the inheritance in the ascending stage of the celestial degrees. Their inheritance is so great that it is not bound in celestial degrees either.
Suryavanshi.
They are of the Sun dynasty. Suryavanshi.
Suri ko kalaon mein nahi banda jata.
The sun is not bound in degrees.
Chandrama ko kalaon mein banda jata hai.
The moon is bound in degrees.
So bilkul sahaj baat hai. Bharat mein devtaon ka raj tha.
So this is a very simple thing. There was a kingdom of deities in India.
Ek hi dharm tha.
There was only one religion.
Ab to kali mein dekho kitne dher manushya hain.
Now look, there are so many human beings in the Iron Age.
वहाँ बहुत कम होते हैं. कहाँ? सत्युगादि.
There are very few human beings there. Where? In the beginning of the Golden Age.
सत्युगादि में फिर भी संख्या 2 करोड़ हो जाती है.
Even so, at the end of the Golden Age, the number of human beings becomes 20 millions. That is 2 crores.
और सत्युग आदि में तो
एंड इन द बिगनिंग ऑफ द गोल्डन एज स्टूडेंट 9 लाख.
9 लाख भी बाद में होंगे.
इवन द 9 लाख दैट इज 900,000 विल बी लेटर स्टूडेंट 4.5 लाख.
4.5 लाख भी बाद में होंगे.
इवन द 4.5 लाख दैट इज 450,000 विल बी लेटर अ मदर 16,000.
एकदम शुरुआत में.
At the very beginning of the golden age, students 8.
शेष आत्माओं का संगठन होगा.
The gathering of the elevated souls will be there.
वहाँ बहुत कम होती है.
There very few are there.
परमपिता परमात्मा एक धर्म की स्थापना करते हैं.
द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल परमपिता परमात्मा establishes one religion
और अनेक धर्मों का विनाश करने आते
हैं. And he comes to destroy many other religions.
जो अनेक प्रकार की धारणाएं फैली हुई है संसार में उन सबका खात्मा कर देते.
He destroys all the different types of dharana practices that are spread in the world.
सब आत्माएं शांति धाम चली जाएंगी.
All the souls will return to the abode of peace.
वहाँ अपवित्र आत्मा तो कोई रह नहीं सकती है.
No impure soul can stay there.
कहाँ? शांति धाम.
Where? In the abode of peace.
यह सुख धाम में भी.
Or even in the abode of happiness either.
उनका नाम है पतित पावन.
His name is Patit Pavan.
पतितों को पावन बनाने वाला.
The purifier of the sinful ones.
सर्व का सदगति दाता है.
He is the giver of true salvation, sadgati to all.
500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से कोई भी ऐसी नहीं होगी.
None among the 5 billion human souls will be such.
जिसकी एक जन्म के लिए कम से कम सदगति न होगी.
Who does not receive true salvation for at least one birth?
ये पुरानी दुनिया.
This is the old world.
सत्युग को कहा जाता है गोल्डन एज.
सत्युग इज कॉल्ड द गोल्डन एज.
पुरानी दुनिया को कहा जाता है आयरन एज.
द ओल्ड वर्ल्ड इज कॉल्ड द आयरन एज.
तो कहाँ आयरन की कीमत और कहाँ गोल्ड की कीमत.
सो देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ आयरन एंड द प्राइस ऑफ गोल्ड.
देवताओं की जो पुजारी है
दोज हु आर द वर्शिपर्स ऑफ डीटीज
वो सहज रीति समझ सकेंगे.
Will be able to understand easily.
Yeah.
What?
कोई देवताओं
के पुजारी होते हैं.
Some are worshippers of deities.
कोई भूत प्रेतों के पुजारी होते हैं.
Some are worshippers of ghosts and spirits.
तो जो देवताओं के पुजारी होंगे वो सहज समझेंगे.
Therefore, those who will be the worshippers of deities will understand easily.
लक्ष्मी नारायण के पुजारी हो.
They might be the worshippers of Lakshmi Narayan.
राम सीता के पुजारी हो वो जल्दी समझेंगे.
They might be the worshippers of Ram Sita. They will understand quickly.
क्योंकि जो पूज्य बनते हैं वो पुजारी बनते हैं.
Because those who become worship worthy, they themselves become worshippers.
शिव बाप तो न पूज्य बनता है और न पुजारी बनता है.
The father Shiv neither becomes worship worthy nor becomes a worshipper.
बाप आकर के फिर पुजारी से पूज्य बनाते हैं.
The father comes and then makes us worship worthy from worshipper.
तो पहले पहले बाप का परिचय देना है.
Hence, you have to give the introduction of the father first.
कि हम उनके बच्चे हैं.
We are his children.
ये बात भूलो नहीं. क्या?
Do not forget this. What?
क्या बात नहीं भूलो.
Do not forget what?
हम बाप के बच्चे.
हम उस बाप के बच्चे हैं.
That we are the children of that father.
इस बाप के बच्चे हैं.
We are the children of which father?
जो सब का बाप है.
Of the one who is the father of all.
सारी दुनिया में जो भी ऊंचे से ऊंचे हैं माने जाते हैं महान से महान.
All those who are the highest, who are considered the greatest in the entire world.
उनका भी बाप.
He is even their father.
तो ऐसे लोग किसको महान मानते हैं? वो क्रिश्चियन लोग.
Whom do the Christians believe to be great?
क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को महान मानते हैं.
The Christians believe Christ to be great.
बौद्धी लोग महात्मा बुद्ध को महान मानते हैं.
The Buddhists believe महात्मा बुद्ध to be great.
मुसलमान लोग मोहम्मद को महान मानते हैं.
The Muslims believe Muhammad to be great.
लेकिन उन महान धर्म पिताओं से भी महान कोई है.
But there is someone greater than even those religious fathers.
जिनको वो धर्म पिताएं इशारा करते हैं.
Towards whom the religious fathers used to point.
वो अपने को गॉड फादर नहीं कहते थे.
They didn't used to call themselves God the Father.
लेकिन वो समझ लेते हैं वो निराकार माने बिंदु.
But they think he is incorporeal, meaning a point.
लेकिन ऐसा नहीं.
But it is not so.
वो बिंदु भी इस साकार शक्ति पर साकार बनकर के आता है.
The point also comes on this corporeal world becoming corporeal.
तो ये बात मत भूलो कि हम उसके बच्चे हैं.
Therefore, do not forget that we are his children.
अगर भूलेंगे,
if you forget,
उस बाप को अगर भूले और कोई और कीमत पर चल पड़े,
if you forget that father and start to follow someone else's direction,
बाप को भूले तो कोई और कीमत पर चल पड़ेंगे और चल पड़ेंगे तो रोना पड़ेगा.
If you forget the father, you will start following someone else's direction. And if you follow someone else's direction, you will have to cry.
Yeah.
What?
जब result निकलेगा,
when the result will be out,
तो रोना पड़ेगा.
You will have to cry.
कब रोना पड़ेगा?
When will you have to cry?
अगर उसके उस बाप को एक बार पहचान लिया,
if you have once recognized the highest on high father,
अंजाम कर लिया कि हम उसकी मत पर चलेंगे,
made a promise, we will follow his directions,
और उसको भूल गए,
and then you forgot him,
और कोई दूसरे को बाप बना लिया उसकी मत पर चल पड़े,
and made someone else your father and started following his directions,
तो क्या होगा? रोना पड़ेगा.
Then what will happen? You will have to cry.
यही अनमानी बनना है.
You have to become soul conscious.
हम आत्माओं को अब वापस बाप के पास जाना.
We souls have to return to the father now.
कितने ढेर मनुष्य मरेंगे.
So many human beings will die.
फिर कौन किसके लिए बैठ करके रोएगा?
Then who will sit and cry for whom?
अभी तो मौत का बाजार बहुत गर्म होगा.
Now, death will rage in full swing.
भारत में सबसे ज्यादा होती है.
People cry the most in India.
क्योंकि दुनिया में जो मौत होता है, जो विनाश होता है.
Because in the world, the death that takes place, the destruction that takes place,
वो उतना भयंकर विनाश नहीं होता है.
Is not that horrible.
खौफनाक नहीं होता है.
It is not that fearsome.
और भारत में खून की नदियां बहती हैं.
And in India, the rivers of blood will flow.
यहाँ जो लड़ाई होती है उसका नाम ही है महाभारी महाभारत ग्रह.
The war which takes place here has been named महाभारी महाभारत ग्रह युद्ध. That is the massive civil war of महाभारत. Hindus, Muslims, Sikhs, Christians.
हर धर्म की आत्माएं यहाँ ज्यादा से ज्यादा तादाद में मौजूद है.
Souls of every religion are present in large number here.
और दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं.
No other country in the world is like this.
हर देश में उनके अपने धर्म की आत्माएं ज्यादा है.
In every country, souls, people of their own religion are in greater number.
एक भारत देश ही ऐसा है जहाँ हर धर्म की आत्माएं ज्यादा से ज्यादा तादाद में भरी हुई.
Only the country of India is such where souls of every religion are filled in large numbers.
यहाँ सारे आपस में लड़ते
हैं. Here, all fight among each other.
खून रेजी होती है, मारामारी होती है.
Bloodshed takes place, fighting takes place.
और देशों में जो विनाश होगा,
the destruction that will take place in other countries,
वो एटम बमों के फटाके होंगे, खेल खराब हो जाएंगे.
In it, the atom bombs will explode and the game will end.
कोई तकलीफ ज्यादा उनको नहीं होगी.
They will not suffer much.
आगे सिंध में 12 बार या हुसैन करते रहते थे.
Previously, in Sindh, they used to cry या हुसैन for 12 months.
और छाती पीटते थे. कौन? मुसलमान.
And they used to hit their chest. Who? The Muslims.
बाप कहते हैं ये मृत्युलोक की रस्म रिवाज है.
The father says, this is the practice of मृत्युलोक, that is the mortal world.
क्या? कोई मर जाता है तो छाती पीट पीट करके रोते हैं.
What? If someone dies, they cry hitting their chest.
तुमको अब अमर लोक की रस्मों का रिवाज सिखाए रहे.
Now, you are being taught the practices of the अमर लोक. That is the immortal world.
जो विकारी रस्म रिवाज है वो सब भूल जाओ.
Forget all the vicious practices.
Yeah.
What?
अब तो मौत का बाजार गर्म होने वाला है, किसके किसके लिए रोएंगे?
Now death will rage in full swing. For whom will you cry?
रोने की बात खत्म,
नो मोर क्राइम।
ये बेकारी रस्म रिवाजें भूल जाओ,
फॉरगेट दीज विशियस प्रैक्टिसेस।
भक्ति मार्ग की रस्म रिवाजें हैं,
दीज आर द प्रैक्टिसेस ऑफ द पाथ ऑफ डिवोशन।
ये भक्ति मार्ग मुर्दाबाद होने,
दिस पाथ ऑफ रिलीजियस डिवोशन हैज टू बी ब्रॉट डाउन, दैट इज मुर्दाबाद।
और ज्ञान मार्ग जिंदाबाद,
एंड द पाथ ऑफ नॉलेज हैज टू बिकम विक्टोरियस, जिंदाबाद।
तो कोई मर जाए तो रोना नहीं है,
सो इफ समवन डाइज शुड बी नॉट क्राई,
क्यों?
समवन सेड नो, व्हाई?
क्यों नहीं रोना है?
व्हाई शुड वी नॉट क्राई?
इसलिए नहीं रोना है कि हम तो परमात्मा बाप के आत्मा रूपी बच्चे हैं।
वी शुड नॉट क्राई बिकॉज वी आर द सोल लाइक चिल्ड्रन ऑफ द सुप्रीम सोल फादर।
क्या?
बॉट?
अब हम जिस्मानी बाप के जिस्मानी बच्चे नहीं है।
वी आर नॉट द बॉडीली चिल्ड्रन ऑफ द बॉडीली फादर नाउ।
हम जानते हैं आत्मा तो अजर अमर अविनाशी।
वी नो दैट द सोल इज चेंजलेस, इमॉर्टल एंड इम्पेरिशेबल।
आत्मा ने एक शरीर छोड़ा, दूसरा छोड़ा लेगी।
द सोल लेफ्ट वन बॉडी, इट विल गो एंड टेक अनदर बॉडी।
उसमें रोने की क्या बात?
वॉट इज देयर टू क्राई अबाउट इन दिस?
पुराना चोला छोड़ दिया।
द सोल लेफ्ट द ओल्ड बॉडी, इट विल टेक अ न्यू बॉडी।
जिनका लगाव लगा होता है, अटैचमेंट होता है देह के साथ, वो फिर बैठ रोते।
दोज हु हैव अटैचमेंट दैट इज लगाव विद द बॉडी सिट एंड क्राई।
बाप कहते हैं देह और देह के संबंधों को अभी त्याग ले।
द फादर सेज यू हैव टू रिनाउंस द बॉडी एंड द बॉडीली रिलेशंस नाउ।
ये भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज सब खलास होने।
All these practices of the path of religious devotion have to finish now.
अभी तुमको बाप कहते हैं नाम ये कब याद करो।
Now the father tells you, remember only me.
Yeah?
What?
उसको याद करके अब रोना? रोना नहीं।
Do not cry remembering anyone now.
नाम ये कब याद करेंगे? तो ऊंची से ऊंची पद पाएंगे।
If you remember only me, you will receive the highest on high position.
और जितने भी पाप हैं वो सब बस हो जाए।
And all the sins will be burnt into ashes.
बस बाकी सब खत्म होने वाला है।
That is all. The rest, everything is going to finish.
अब हम जा रहे हैं वापस।
Now we are going back.
नाटक पूरा होता है।
The drama is complete.
नाटक में तो सब एक्टर्स हैं।
In the drama, everyone is an actor.
सब एक्टर्स हैं तो फिर मोह किस बात का रखेंगे?
When everyone is an actor, then for what will you keep attachment?
अभी तो हमको जाए करके नई दुनिया में दूसरा पार्ट बजाना
है। Now we have to go and play another role in the new world.
14/11/66 वाणी का दूसरा पेज।
The second page of the Vani dated 14/11/66.
वहाँ रावण की क्या दरकार है?
What is the need for Ravan there?
Ravan mane rulane wala.
Ravan means the one who makes us cry.
Aur Ram mane? Hasane wala, Raman karane wala.
And Ram means the one who makes us laugh, the one who delights us.
Avinashi wala drama mein jo part hai, wo phir repeat hona
hai. The part of everyone which exists in the eternal world drama has to repeat again now.
अभी नाटक पूरा होता है जैसे बाप ज्ञान का सागर है।
Now the drama is complete. Just as the father is the ocean of knowledge.
आनंद का सागर है।
The ocean of happiness.
सबका सदगति जाता है, प्यार का सागर है।
The giver of true salvation to all, the ocean of love.
ऐसे तुमको भी मास्टर बनना।
In the same way, you too have to become a master. That is the one who does in practical.
सागर में सब बादल पानी भरकर के निकलते हैं।
All the clouds, that is souls, fill themselves up with water of knowledge in the ocean and come out.
कोई तो बादल अच्छी वर्षा करते हैं।
Some clouds give good rain.
वो फिर आप समान भी बनाते हैं।
Then they also make others equal to themselves.
तो तुमको भी खूब ज्ञान की बरसात करनी है।
Therefore, you too have to pour a heavy rain of knowledge.
और बहुतों को ज्ञान सुना करके आप समन बना लें
एंड मेक मेनी पीपल इक्वल टू योर सेल्फ बाई नरेटिंग नॉलेज.
आंखों की लाठी बनना है.
यू हैव टू बिकम अ ब्लाइंड मैन स्टिक.
बाप को तो बच्चे मददगार चाहिए.
द फादर नीड्स हेल्पफुल चिल्ड्रन.
तो बाप कहते हैं तुम अंधों की लाठी बनो.
दस द फादर सेज बिकम अ ब्लाइंड मैन स्टिक.
सारी दुनिया अज्ञान की अंधी है.
द एंटायर वर्ल्ड इज ब्लाइंडेड बाई इग्नोरेंस.
उन अज्ञान के अंधों को उनकी बुद्धिरूपी हाथ में क्या समा दो.
What should you give in the hand like intellect of those blinded by ignorance?
ज्ञान की लाठी समझ.
Give them the stick of knowledge.
उसे लाठी के सहारे सहारे इसे विषय वैतरण नदी को पार कर जाएंगे.
With the help of that stick, that is knowledge, they will cross this river of poison of the vices.
सबको रास्ता बताओ.
Show the way to everyone.
एक एक ब्राह्मण को अंधों की लाठी बनना है.
Every Brahman has to become a blind man's stick.
तुमको अभी तीसरा ज्ञान का नेत्र मिला.
Now you have received the third eye of knowledge.
इनको कहा जाता है तीसरा नेत्र मिलने की कथा.
This is called the story of receiving the third eye.
Yeah?
What?
तीजरे की कथा होती है ना?
There is the story of the third eye. तीजरे की कथा. Isn't there?
तिजिया कही जाती.
It is called तिजिया.
दो नेत्र हैं शरीर के.
टू आईज आर ऑफ द बॉडी.
और तीसरा नेत्र है आत्मा का.
एंड द थर्ड आई इज ऑफ द सोल.
मनुष्य तो तब भी समझते नहीं है कि सारी दुनिया में कैसे तुच्छ बुद्धि फैल गई.
इवन सो द ह्यूमन बींग्स डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ पीपल ऑफ वर्थलेस इंटेलेक्ट हैव स्प्रेड इन द एंटायर वर्ल्ड.
ये भी नहीं जानते हैं कि हमारा धर्म किसने स्थापन किया.
They don't know even this, who established our religion.
दूसरे धर्म वाले सब जानते हैं क्या?
All the people of the other religions know it. What?
कि हमारा धर्म क्राइस्ट ने स्थापन किया.
They know that Christ established there, that is the Christian religion.
मुसलमान कहेंगे मोहम्मद ने स्थापन किया.
The Muslims will say Muhammad established their religion.
सिख कहेंगे गुरु नानक ने स्थापन किया.
The Sikhs will say Guru Nanak established their religion.
कब किया? वो भी बता देंगे.
When did they establish it? They will even say that.
एक भारतवासी है जिनको यही पता नहीं है कि हमारा धर्म किसने स्थापन किया.
Only the Indians are such who do not know this much, who established our religion.
और कब स्थापन किया?
When did he establish it?
और फिर अब कब स्थापन करने के लिए आएंगे?
And when will he come again to establish it? They don't know anything.
वो दूसरे धर्म के लोग फिर भी जानते हैं.
Those people of the other religions at least know that.
कि जब कयामत होगी.
At the time of destruction, कयामत, doomsday.
तो हमारे धर्म पिता, पैगंबर फिर प्रत्यक्ष होंगे.
Our religious father, the messenger, पैगंबर, will be revealed again.
बार बार ये भी पता नहीं.
The Indians do not even know this.
Shiv Jayanti manate rehte.
They just keep celebrating Shiv Jayanti. That is birthday of Shiv.
Jab Jayanti manate hain to sarvyapi kaise hoga?
So when they celebrate the Jayanti, how will he be omnipresent?
Jayanti sakar ki manai jati hai ya nirakar ki manai jati hai?
Is Jayanti of the corporeal one celebrated or the incorporeal one?
साकार में कुछ होता है तो उसकी जयंती मनाते.
When there is something in the corporeal form, its jayanti is celebrated.
आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है.
When the soul enters the womb,
तो जयंती मनाई जाती है क्या? नहीं.
Is its jayanti celebrated then? No.
जब प्रत्यक्ष होती है तो जयंती मनाई जाती है.
When it is revealed, its jayanti is celebrated.
यहाँ भी है.
Here also it is same.
बाप, supreme soul, शिव ज्योति बिंदु.
When the father, supreme soul, the point of light Shiv.
वो जब इस सृष्टि पर आता है, तो जयंती नहीं मनाई जा सकती.
Comes on this world, his jayanti cannot be celebrated. When he is revealed through a permanent chariot in this world, his jayanti is celebrated. Meaning, the Shiv Jayanti, which the so-called Brahma Kumar Kumaris celebrate now, do they celebrate the false one or the true one? Just as the people of the path of devotion celebrate it, seeing them, they too celebrate it. They just don't know when Shiv takes the birth in the form of revelation. Whether he has taken the birth or not. Now we understand the idea. That Shiv is revealed in the world through three murtis, that is, personalities. And he is revealed through the three murtis simultaneously. It is not so that he is revealed through the murti of Brahma first, then through the murti of Shankar, and then at last through Vishnu. No. All the three murtis are revealed together. He cannot be omnipresent. No one in the world knows about the father and the creation. Even the saints and sages kept saying neti neti. Meaning, we do not know its beginning, middle and end. This is a big mistake that they have said God to be omnipresent. You prove it and explain it now. What? Someone said, God is not omnipresent. He is present in one. Those so-called Brahmins just say, God is not omnipresent. They don't prove it and say, and what about you? Students, we prove it and explain it. What do you prove? Students, God is not omnipresent. He is not omnipresent. Students, he is present in one. He is present in one. And you prove and explain about the one. Who the one is, how he is, and what kind of parts he is playing. Someone said, along with name, form, place and time. You explain everything. Therefore, it was said, they just say it. You prove and explain that he is the father of all. And he is the one who purifies all the sinful ones. He takes you to the new world from the old world. There isn't even the name and trace of sorrow there. Where? The new world to which he takes you. There isn't the name or trace of sorrow there. Achha? Does he himself go into the new world or does he take us there? Student, he takes us there. Does he take us to the new world? Does he himself go to the new world? How will he take us when he himself doesn't go? Someone said, nothing stays forever on this world. One Shiva Baba alone stays forever. Yes, Shiv, the point of light, becomes a witness, Sakshi. But the corporeal body in which he enters, that corporeal body goes there and along with him, we children go there as well. They have written confusing things in the scriptures. Look, what various things they say, even for Lakshmi Narayan. People say, did these Lakshmi Narayan not have children? That world is called complete in all virtues. 16 celestial degrees complete. Completely viceless world. It is indeed not called a vicious world, so that they would give birth to vicious children. They were indeed viceless. Then how will children take birth from vices? They have an elevated conduct, Shreshtachari. They are not the ones who act through degraded, that is brushed, organs.
So, ye vicious world aur viceless world. Vikari duniya, nirvikari duniya.
So, the vicious world and the viceless world.
Shreshtachari duniya, bhrashtachari duniya.
The world with people with an elevated conduct and the world with people with a corrupt conduct.
Ye naam to hai na?
There are names, aren't there?
Naam hai, to vaise kaam bhi hue honge.
When there are names, then accordingly, deeds must have been performed as well.
So, phir kaise kehte ho ki wahan vikar honge?
Then, how can you say vices will be there?
Satyutreta mein bhi vikari dikhai diye.
They have shown vicious people even in the golden and the silver ages. Actually, unless they have recognized the father, no one can become a deity. What was said? Someone said, without recognizing the father, no one can become a deity. First, they should receive the complete recognition of the father. Then after that, anyone can become a deity. The souls of the other religions who come from the copper age, don't recognize the father completely. Therefore, they don't come in heaven and don't become a deity either. In reality, calling the father omnipresent is a very big mistake. Now you have recognized the father and you say, Baba, we have become yours again. We have become yours again. We became yours in the beginning of the yagya and we have become yours even now. We have come to take the kingship, Rajbhag, from you. Look, they have written so many bad things in the scriptures. They have written that Lakshmi Narayan were in Satyug. And they have put Radha Krishna in Dwapar Yug. They wrote one thing correctly and another thing falsely.
Radha Krishna, agar Dwapar mein hue hote,
if Radha Krishna had been in Dwapar Yug,
so Kali Yug mein bhi sthapan karke jayenge kya?
Then would they have established the Iron Age and gone away?
Krishna ko Bhagwan keh rahe the.
They say Krishna is God.
Unko Dwapar ke ant mein dikhaya hua hai.
He has been shown at the end of the Copper Age.
Ab Bhagwan aayenge, chalo Krishna ke roop mein hi aaye.
If God comes, okay, if he comes in the form of Krishna,
to kya Kali Yug paapi yug ki sthapana karke jayenge?
Then will he establish the sinful Iron Age and go back? They have written all those confusing things in the scriptures. The father says, I come and tell you the truth. Krishna is certainly the first prince of the new world.
Then Krishna ki atma yahan aati hai. Kahan?
Then the soul of Krishna comes here. Where?
Janma lete lete sangam yug mein aati.
After taking many births, he comes in the confluence age.
Krishna Dwapar mein kaise aa sakta hai?
How can Krishna come in Dwapar Yug?
Krishna ki atma Dwapar mein aati hogi.
The soul of Krishna might be coming in Dwapar Yug.
Ekdam sabki patthar buddhi ho gayi.
Everyone's intellect has become completely thick like a stone.
Samajhte nahi hai. Wo to kasme par kalam ki lagate rehte hain.
They don't understand anything. They keep disgracing Krishna.
Kehte hain maa ne rassi se bandha.
They say his mother bound him with a rope.
Ye kya?
What is this?
कौन सी रस्सी से बांधा?
With which rope did she bind him?
है? माँ ने रस्सी से बांधा, तो कौन सी रस्सी से बांधा?
His mother bound him with a rope. Then, with which rope did she bind him?
ऐसा तो हो नहीं सकता कि माता कृष्ण को रस्सी से बांधे.
It cannot happen that the mother binds Krishna with a rope.
है? अरे काहे से बांधा?
अरे विथ व्हाट डिड शी बाइंड हिम?
इसने की रस्सी से बांधा.
शी बाउंड हिम विद द रोप ऑफ लव.
इसने की डोरी से बांधा.
शी बाउंड हिम विद द स्ट्रिंग ऑफ लव.
ये तो जैसे कि उनकी इंसल्ट हो गई.
दिस इज जस्ट एज इफ ही वाज इंसल्टेड.
तो ये सब भूले कर दिए शास्त्रों.
सो दे हैव मेड ऑल दीज मिस्टेक्स इन द स्क्रिप्चर्स.
बात समझाते हैं मनुष्यों की बुद्धि कितनी मारी गई.
The father explains, the intellect of the human beings has become so dull. They have become the ones with a worthless intellect. Now, you understand, we souls are residents of there. Of where? Of the abode of peace, Shantidham. And only that is our house.
जिसको हम स्वीट होम कहते हैं.
Which we call sweet home.
Sweet home माने? स्वीट कहते
हैं. What does sweet home mean? How is it sweet?
है? मीठा घर कहते.
How is it a sweet home?
तो गोदाम को फिर भी मीठा कहते.
You can anyway call the abode of happiness sweet.
शांति धाम को sweet home क्यों कहते हैं?
But why do you say that? The abode of peace is sweet.
है?
आत्मा अपने उस स्टेज में टिक
जाते हैं. जब आत्मा की स्टेज में हम टिक जाते हैं.
Someone said the soul becomes stable in soul conscious stage. When we stabilize in a soul conscious stage,
तो आत्मा में हाँ नहीं नहीं कड़वापन खत्म खत्म हो जाता है. मिठास आ जाता है.
Then the soul, someone said peace. Yes. No, no. Bitterness ends. Sweetness comes in it.
जो रूहानियत है वो मिठास को लाने वाली होती.
Spirituality brings sweetness.
और जिस्मानियत कड़वा पड़ता है.
And body consciousness brings bitterness.
तो हम आत्म की स्टेज में जहाँ जाकर के रहते हैं बाप के पास.
So, the place near the father where we go and stay in the soul conscious stage.
वहाँ स्वतः ही हमारी आत्मा में मिठास आ जाता है.
Their sweetness is filled in our soul automatically.
वहाँ जाने के लिए हम भक्ति आदि करते हैं.
We perform devotion and so on to go there.
कहते हैं हमको शांति चाहिए.
We say we need peace.
अरे आत्मा को ऑर्गन्स मिले हैं पार्ट बजाने के लिए.
अरे व्हेन द सोल हैज रिसीव्ड ऑर्गन्स टू प्ले इट्स रोल
फिर शांति में कैसे जाएगी रहेगी.
देन हाउ विल इट गो एंड लिव इन पीस.
सदाकाल के लिए तो शांति हो नहीं सकती.
पीस कैनॉट स्टे फॉर एवर.
शांति के लिए देखो कितने हड्डियों का करते रहते.
लुक हाउ मेनी rigid physical exercises, hatha yoga, etc. they keep doing to attain peace.
Abhi to bachche jante hain shanti dham mein atma hi rehti hai.
The children know now that only souls reside in the abode of peace.
Abhi hum jaenge shanti dham.
Now we will go to the abode of peace.
Aur phir aayenge sukh dham paath bajane ke liye.
And then we will come to the abode of happiness. To play our role.
वो तो उल्टी सुल्टी बातें करते रहते हैं.
They keep saying confusing things.
समझते हैं मनुष्य जो मरते हैं उनके लिए स्वर्ग है.
They think heaven is there for the human beings who die.
ये क्या समझती है? जो मर गया तो स्वर्ग पाया.
What does the world think? The person who died went to heaven.
कहाँ का वासी हुआ?
स्वर्ग
वासी हुआ. अरे
He became a resident of where? He became a resident of heaven. Arre, someone said something.
कहते हैं स्वर्ग वासी हुआ.
They say he became a resident of heaven.
अरे स्वर्ग तो सती को त्रेता में था.
अरे heaven was in the golden and the silver ages.
अभी इस कलयुग की दुनिया में स्वर्ग कहाँ से आ गया जो स्वर्ग वासी हुआ.
How did heaven come now in this time of the iron age world? So that he became a resident of heaven.
तो क्यों कहते हैं?
Then why do they say so?
हाँ नरकवासी था.
Someone said because he was a resident of hell in his previous birth. Yes, he was a resident of hell.
तो नरक की दुनिया में जन्म लेगा ना?
Then he will certainly take birth in the world of hell, won't he?
नरक में मरेगा तो नरक की दुनिया में जन्म लेगा. स्वर्ग में मरेगा तो स्वर्ग की दुनिया में जन्म लेगा.
If he dies in hell, then he will take birth in the world of hell. If he dies in heaven, then he will take birth in the world of heaven.
यहाँ तो स्वर्ग है ही नहीं इस दुनिया में.
Here, there is no heaven at all in this world.
तो स्वर्ग में जन्म कहाँ से लेगा?
Then how will he take birth in heaven?
फिर क्यों कहते हैं स्वर्गवासी हुआ?
Then why do they say he has become a resident of heaven?
जो मरेगा कहेंगे स्वर्गवासी हुआ.
Whoever dies, they say, he has become a resident of heaven.
यहाँ की बात है.
Someone says something. It is about here.
यहाँ संगम युग में जो देह भान से मरेंगे.
Here, in the conscience age, those who die from body consciousness
वो स्वर्ग का अनुभव करेंगे.
Will experience heaven.
सुख की दुनिया का अनुभव करेंगे.
They will experience the world of happiness.
अगर देह भान से मरेंगे नहीं.
If they don't die from body consciousness,
देह और देह के संबंधियों से नष्ट मोह नहीं बनेंगे.
If they don't become नष्ट मोह, that is the conqueror of attachment from the body and bodily relatives,
तो सुख धाम का अनुभव शांति धाम का अनुभव नहीं कर सकते.
They cannot experience the stage of the abode of happiness, the abode of peace.
बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता.
Without dying, no one can go to heaven.
वो है हद का मरना और यहाँ है बेहद का मरना.
That is the limited death and here it is the unlimited death.
मरना कौन चाहता है?
Who wants to die?
कोई मरना चाहता है?
नहीं.
Does anyone want to die? No.
बाप तो जीते जी मरना तुमको सिखाते हैं.
The father teaches you to die while living.
जिंदा भी बने रहे और जिंदा होते हुए भी मरे हुए समझ.
You must be alive and while being alive, you should be equal to a dead one.
जैसे कान है ही नहीं.
As though you don't have ears at all.
कोई ग्लानी करता है एक कान से सुना दूसरे कान से.
If someone defames you, you listen to it with one ear and left it to the other one.
कोई गाली देता है एक कान से सुना दूसरे कान से जैसे कान है.
If someone says bad words, you listen to it with one ear and left it to the other one, as though there are no ears at all.
आँखों से देखते हुए नहीं देखते.
You should not see while seeing with the eyes.
ऐसे ही सब इंद्रियों की.
It is the same for all the organs.
आप कहते हैं कि मनुष्य जो भी करते हैं वो यहाँ के लिए ही रहता है.
द फादर सेज व्हाटएवर ह्यूमन बीइंग्स डू इट इज फॉर हियर इनडीड.
बाप तो स्वर्ग नई दुनिया रखते हैं.
द फादर क्रिएट्स स्वर्ग द न्यू वर्ल्ड.
उसे वैकुंठ कहा जाता है.
इट इज कॉल्ड वैकुंठ.
वो तो ये भी नहीं जानते.
दे डोंट नो इवन दिस.
तुम कह सकते हो भगवान उवाच.
यू कैन से भगवान उवाच. गॉड स्पीक्स.
ये दान पुण्य आदि करना सब भक्ति मार्ग.
गिविंग डोनेशंस एंड चैरिटी एक्सेट्रा. ऑल दिस इज द पाथ ऑफ डिवोशन. वॉट
जो कि दान पुण्य करते हैं वो किसको देते हैं.
वॉट एवर डोनेशंस एंड चैरिटी यू गिव टू होम डू यू गिव इट.
गरीब गुनी लोगों को देते हैं.
Someone said something. You give it to the poor and needy ones.
जिन गरीबों को देते हैं वो पाप करते हैं या पुण्य करते हैं.
Do the poor ones and needy ones to whom you give commit sins or do noble deeds?
पाप करते हैं. आजकल तो जो मांगने वाले होते हैं.
They commit sins. Nowadays, those who beg.
जो भी भिखारी होते हैं जिनको दुनिया देती है.
The beggars. To whom the world donates.
वो एक तरफ लेते जाते हैं और दूसरी तरफ शराब पी लेते.
Keep taking arms on one side and on the other side they go to liquor stall and drink alcohol.
तो पाप हुए या पुण्य हुआ. और भी पाप बढ़ता चला जाता है.
So was it a sin or a noble deed? The sin keeps on multiplying further.
तो असली दान क्या है.
So what is donation in a true sense?
असली दान है ज्ञान का दान जो बाप देते हैं.
True donation is the donation of knowledge which the father gives.
अगर धन दान भी करना है.
Even if you want to donate money.
तो नई दुनिया की स्थापना में जो भी धन लगेगा.
Then the money which will be used in the establishment of the new world.
वो ही सफल होगा.
Only that money will be fruitful.
तो भक्ति मार्ग के शास्त्रों में कोई सार नहीं है.
Hence, there is no essence in the scriptures of the path of devotion.
भक्ति है रात सत्युत्रेता ब्रह्मा का दिन.
Devotion is night. The golden age and the silver age are Brahma's day.
और द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात.
And the copper age and the iron age are Brahma's night.
अच्छा सत्युत्रेता में ब्रह्मा होता है.
All right. Is Brahma present in the golden age and silver age? Someone said in the shooting period of the confluence age.
Satyutreta mein to Brahma hi nahi hota. To Brahma ka din kahan se hoga?
Brahma is not at all present in the golden age and the silver age. Then how will Brahma's day be there?
Aur Dwapar Kaliyug mein bhi Brahma nahi hota.
And in the copper age and the iron age either Brahma is not there.
So Brahma ki raat kaise hui Dwapar Kaliyug?
Then how is it that copper age and the iron age are Brahma's night?
Ye shooting period ki baat hai.
This is about the shooting period.
Is samay Bhagwan Baap aate hain to charon yugon ki shooting karate.
When God the Father comes at this time he makes you do the shooting of all the four ages.
Rehearsal karate. Jaise koi drama mein rehearsal karai jati hai.
He makes you do the rehearsal. Just as they make you do rehearsals in a drama.
तो यहाँ भी बाप आते हैं रिहर्सल कराते हैं.
Similarly, here also the father comes and he makes you do a rehearsal.
यहाँ ब्रह्मा भी है.
Here, Brahma is present.
तो ब्रह्मा का दिन भी है. तो ब्रह्मा की रात.
So there is Brahma's day as well as Brahma's night.
जो ब्रह्मा का दिन है तो तुम ब्राह्मणों का दिन है.
Brahma's day is the day of you Brahmins.
ब्रह्मा अगर घोर अंधियारे में है तो तुम ब्राह्मण जी घोर अंधियारे.
इफ ब्रह्मा इज इन एक्सट्रीम डार्कनेस देन यू ब्राह्मण्स आर आल्सो इन एक्सट्रीम डार्कनेस.
ब्रह्मा घोर सोझरे में होगा तो ब्राह्मण जी घोर सोझरे में
चलेगा. इफ ब्रह्मा इज इन एक्सट्रीम डे देन यू ब्राह्मण्स विल गो इन टू एक्सट्रीम डे एज वेल.
सोझरे की बात फिर तुम्हारी रात शुरू होती.
आफ्टर द डे योर नाइट बिगिन्स अगेन.
तुम पहले पहले सत्युग में जाते हो.
यू गो इन द गोल्डन एज फर्स्ट.
क्या कहा है.
व्हाट वाज सेड.
वो दूसरे धर्म वाले जो नारायण है वो बाद में सत्युग में जाते हैं.
द नारायण्स ऑफ द अदर रिलीजियंस गो इन द गोल्डन एज लेटर.
और तुम
पहले पहले
तुम पहले पहले स्वर्ग में जाते हो
एंड यू गो टू द हेवन फर्स्ट
फिर तुम यहाँ वाम मार्ग में आते
देन यू कम हियर इन टू द लेफ्ट पाथ दैट इज वाम मार्ग
क्या
वॉट
पहले पहले तुम स्वर्ग में भी जाते हो
यू गो टू द हेवन फर्स्ट
और फिर तुम वाम मार्ग में भी आते हो
एंड देन यू कम इन टू द वाम मार्ग एज वेल
पहले ब्राह्मण फिर सूर्य भी तुम ही बनते हो
You yourself become a Brahmin at first, as well as you become a Shudra later.
क्या नियम है?
What is the rule?
जो पहला ब्राह्मण बनता है, वो पहला देवता बनता है.
The one who becomes the first Brahmin becomes the first deity.
जो पहला देवता है, तो पहला क्षत्रिय.
The one who is the first deity is the first warrior, that is क्षत्रिय.
जो पहला क्षत्रिय है, वो पहला वैश्य.
The one who is the first Kshatriya is the first Vaishya, that is merchant.
Oh, he is the first Shudra.
And he himself is the first Shudra, that is of a low caste.
Hey, boy.
Then he himself is the first Brahmin.
So, ye tum bante ho. Vastav mein hai Shiv Bhagwan.
So, it is you who become this. In reality, it is Shiv Bhagwan Uvaj, that is God Shiv speaks.
Wo keh dete hai Krishna Bhagwan Uvaj.
They say Krishna Bhagwan Uvaj, that is God Krishna speaks.
On.
Who?
Tathagata Brahman bhi keh rahe the, duniya wale bhi keh rahe the.
The so-called Brahmins as well as the people of the world say so.
Tumhari buddhi mein baith gaya.
It is fixed in your intellect.
Kya?
What?
Ki jo bhi shakti wala to vaach karne wala hai, bolne wala hai.
That the one who speaks the truth, the one who says the truth.
Wo swayam Shiva. परमात्मा है और शिव परमात्मा भी बिंदी नहीं है
इफ शिव सुप्रीम सोल हिमसेल्फ मोर ओवर शिव द सुप्रीम सोल इज नॉट अ पॉइंट
बिंदी बन करके नहीं बोलता है
ही डजंट स्पीक इन द फॉर्म ऑफ अ पॉइंट
क्योंकि आज में भी वो बिंदी बन करके नहीं बोला था
ही डिडंट स्पीक इन द फॉर्म ऑफ अ पॉइंट इवन इन द बिगिनिंग ऑफ द यज्ञ
जैसे किताबों में लिख दिया है निराकार स्वरूपम शिवो अम
एज दे हैव रिटन इन बुक्स Nirakara Swarupam Shivoham Shivoham. That is, I am an incorporeal form. I am Shiv, I am Shiv.
ऐसे लिख दिया है ना? ये बातें गलत.
They have written like this, haven't they? These issues are wrong.
मनुष्यों की लिखी हुई बातें.
These are issues written by human beings.
बाप कहते हैं, मैं तो मुकर्रर रथ में आता
हूँ. The father says, I come in the permanent chariot.
तो वास्तव में शिव भगवान आते हैं.
Therefore. In reality, it is Shiv Bhagwan Uvaj.
वो कह देते हैं कृष्ण भगवान Uvaj.
They say Krishna Bhagwan Uvaj.
और मैं कहता हूँ Shiv Bhagwan. Om.
And I say Shiv Bhagwan Uvaj. Om Shanti.